آگے پھر فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار۔ اس آیت میں بالکل وہی بات ایک مختلف انداز سے بتائی گئی کہ قرآن آپ پر بھی اترا، پہلے کتاب لوگوں میں سے عبداللہ بن سلام، نجاشی، سلمان فارسی وغیرہ یہ ایمان لا چکے تھے، اپنی کو بھی مانا، ہماری کو مانا، نجاشی مسلمان ہو گیا، لیکن کافروں کا حال کیا ہے؟ مکہ والوں کا، یجہدو، اور یجہد کا لفظ ہے نا جیم ہا دال سے، ماننے کے بعد انکار کرنا۔ آپ ایک بات پہلے مان جائیں کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کے نہیں میں نے کب کہا تھا، یہ ہوتا ہے جہد، منع کر دیا، کہ ایسے لوگ سٹبن ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 152 میں ہم پڑھ چکے، الذین یتبعون الرسول النبی۔ تو لہٰذا بات کا خلاصہ کیا ہے کہ قرآن کے دلائل بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈھیٹ پنے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں، وما کنت تتلو من قبلہ، نہ پہلے پڑھ سکتے تھے، من کتاب، ان کتاب میں سے کچھ، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ لکھ سکتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو یہ باطل پرست ضرور شک کرتے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھا لکھا نہ ہونے کو آپ کی خوبی بنا کر پیش کیا۔ دیکھیے عموماً پڑھا لکھا نہ ہونا جو ہوتا ہے یہ انسان کا عیب ہوتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین سے کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں پڑھے لکھے تھے آپ، آپ نہ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، اور نہ لکھ سکتے تھے۔ لا تخطہ، خطو کا لفظ دیکھیے، خا توا سے ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں خط، خطوط، یہ بھی اسی سے لکھنے کے لیے آتا ہے، یہ رائٹنگ کے معنوں میں آتا ہے، بھی یمینی کا دائیں ہاتھ سے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے، کھانا اور سیکھنا دونوں سیدھے ہاتھ سے ہوں، دیکھیے اللہ کی نعمت ہے نا۔ اور خطہ یا خطو کا معنی ہوتا ہے لکیریں کھینچنا، لمبی لمبی لائن میں کھینچنا، اب ہم جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہی ہوتی ہیں نا، تو کہا کہ اگر آپ لکھ سکتے تو پھر تو یہ باطل پر شک میں آتے ہیں۔ ارتاب کا لفظ کیا روٹ ہوگا؟ را یا بس، اور مبتلون کا واحد کیا ہوگا؟ مبتل، بات ہوئے لام سے، اہل کتاب کے نہ ماننے والے لوگوں کو یہاں مبتلون کہا گیا، کہا کہ یہ نہیں مانیں گے کہ ایک شخص جس کو اپنی زبان نہ لکھنی آتی نہ پڑھنی آتی وہ اتنی خوبصورت کتاب لے آیا، قرآن لے آیا، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کیا یہ کہہ سکتے تھے نا ہاں بھی کیا بڑی بات ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ایک شخص جو انگلش زبان کا ماسٹر ہے وہ ایک کتاب لکھتا ہے، کسی کو حیرت ہوتی؟ کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ سپیچ دیتا ہے انگلش میں، کوئی حیرت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لیکن بالفرض ایک ایسا شخص جس کو انگلش بالکل نہیں آتی آپ کے سامنے آئے، فر فر انگلش بولے، آپ امیجن کریں، کوئی اپنی نانی دادی، کوئی بڑا بندہ لے لیں جس کو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایک دم آپ کے پاس آئے اور انگلش بولنی شروع ہو جائے، کیسا لگے؟ اور ساتھ ایک کتاب دکھائے کہ یہ میں نے لکھی ہے، حیرت ہوگی نا، بس یہ فرق ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی یہاں کل آئے اور اسپینش میں درس شروع کر دے، حیرت ہوگی نا۔ تو اللہ کے نبی کو لکھنے اور پڑھنے سے دور رکھنا اس وحی، اس ذکر کی حفاظت کا ذریعہ تھی کہ اس میں کسی انسان کے افکار نہ شامل ہوں، اس میں ان کی اپنی سوچیں نہ آئے۔ کہا کہ ہم نے یہ دے دیا لیکن نہ مانے، نہ مانے، بل ہوا آیا تم بھائی نہ تم فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جن کو علم دیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالموں کے بغیر کوئی ان آیتوں کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ ان کو لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ قرآن تو ان کے دلوں پہ لکھا ہوا ہے۔ حفاظ قرآن، اللہ کے نبی جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے نا کہ دل پر اترا تھا، और दिल में ही जाता है। आज भी ये बात पूरे शऊर से कही जा सकती है, सबसे आसानी से जो चीज़ याद होती है ना, वो कुरान की आयत है। आप आजमा के देख लें, आप जो हिस्सा हिफ्स का कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आप अगर उसमें ज़्यादा तवज्जो दें ना, आप हैरान होंगे। मैं खुद हैरान हूँ, यकीन करें, मैंने कुछ ऐसी सूरतें याद की हुई हैं आज से 10-12 साल पहले की होंगी, मैंने कभी शौरी तौर पे उसको दोहराया भी नहीं, लेकिन जहाँ मौका आता है वो आयत जूम जुबान पे आ जाती है। मैं हैरान होती हूँ कि कुरान कापियों में लिखा होता तो मेरी वो कापियाँ कहीं गुम चुकी होती, कहीं नोट्स में होता, कहीं लिखत पढ़त ईमेल्स में होता, मुझे मिलती ना वक्त पे। जहन में कैसे रील चलती है। कल आप जब इंशाल्लाह पढ़ाने बैठेंगे आपको इसका अंदाज़ा होगा, कहाँ की सुनी कहाँ की पढ़ी बात समझ आती है। मैं खुद हैरान होती हूँ अंदर कौन से कंप्यूटर लगे हैं, कौन सी रील है। ये इस कुरान का इजाज़ है, दिल पे उतरा था ये दिल में जाता है। आप कुरान लिखना मुश्किल से सीखेंगे, कुरान को याद रखना सबसे आसान है। अल्लाह ताला कहते हैं वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। है कोई जो कुरान सीखना चाहे, कुरान तो नसीहत के लिए बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए आपकी डिवोशन चाहिए, गहरी दिलचस्पी। सोचे, जैसे कुछ लोगों को रात चलते रास्ते याद हो जाते हैं ना, खुद ना भी ड्राइव करें उनको पता चलता है कि हम इधर से गुजर रहे हैं। कुछ लोग रोज़ जाएंगे और उनको पता ही नहीं होता। बिल्कुल कुरान का भी यही अंदाज़ है। आप गौर किया करें, तदब्बुर करें। ख़ास तौर पे दौरे कुरान में ये चीज़ मैंने देखा है कि बहुत फ़ायदा देती है। इतनी तेज़ी से कुरान गुजरता है ना आपके सामने से, तो आपको फ़ौरन याद आता है ये आयत मैंने दूसरे रोज़े में सुनी थी, इसका अंदर ये दूसरे पारे में होगी। ये आयत मेरा ख्याल है कि चौथे दिन आई थी, ये चौथा पारा होगा। वो पारे के साथ दिन चल रहा होता है ना, आजकल शायद आपको इस तरह लगता होगा कि ये अभी रिसेंटली सूरतों में पढ़ी है, फ़ौरन जहन वहाँ चला जाता है। अच्छा, ये शाम की क्लास में हुई थी, अच्छा वहाँ तो हम इस सबक में, ये यहाँ की होगी। यानी ये सिर्फ अल्लाह का मौजज़ा है, किसी बंदे की ज़रा सारी इसमें ताकत नहीं। फी सुदूरिल लज़ीना, तारीख का वाक़या भी आता है कि मुसलमानों पर एक ऐसा ज़ालिम बादशाह था कि उसने हुक्म दिया अपने कारिंदों को कि सारे कुरान जला दो, सब मजहबी किताबें इनकी ख़त्म कर दो। लोगों ने अमल किया, जला दी, ज़ाया कर दी किताबें। रात को एक दिन कहीं से बादशाह गुजर रहा था, कुरान पढ़ने की आवाज़ आई, उसको बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरे वर्कर्स जो है उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला। कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे तो अभी भी इस कुरान की आवाज़ आई है। कहने लगे कि हम किताबें तो जला सकते हैं, लेकिन इस कौम के तो सीनों में ये कुरान है, इनको हम कैसे ख़त्म करें। फी सुदूर लसीना, लेकिन याद करें ये सीने में जाता है ना, उससे पहले इस सीने को खाली करना पड़ता है। इन सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, आप अपने सीने से गंदी चीज़ों को निकाल दें। फलां ड्रामा कब है, उसकी कौन सी डेट है, कौन सी किस चल रही है, नई फिल्म कौन सी आई है। जिस दिल में इस तरह की चीज़ें होंगी ना, वहाँ कुरान दे रहता। आप बिल्कुल बाकी गमों से खाली करें, अपने ज़ाती गमों से भी दिल को खाली कर दें। क्या गम है, क्या फिक्र है, क्या खुशी है, ख़त्म करें। मैं कहती हूँ एक वक्त आता है कि बंदे को अल्लाह ताला चलता फिरता कुरान क्यों बनाता है, क्योंकि उसके अंदर हर लम्हे का उसका फिक्र होता है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखें ना, उनको ये फिक्र था किस साथी की शादी होने वाली है, अब मैं कोई जोड़ा छोड़ा सिलवा लूँ, किसी को देने के लिए तोहफा ले लूँ। हमारे तो ये गम है ना, हमारे सीनों में क्या कुछ है। कुरान की क्लास में भी बैठे यही गम होता है कि आज रात मेहंदी में जाना है क्या पहनेंगे, आज वहाँ जाना है शादी आने वाली है उसको क्या तोहफा देंगे। जिस सीने में दुनिया के बहुत गम होंगे ना, उसको कुरान नहीं मिलेगा। यहाँ से उठ के सब्ज़ी कौन सी लेनी है, ये गम डाल लें आपको कुरान ही नहीं समझ आएगा। इसलिए जब यहाँ आए ना, तो जैसे सफ़ेद कपड़े पहन के यूनिफॉर्म के आते हैं, दिल को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करके आया करें। और घर वालों को सख्ती से बता दें, हमें ना फ़ोन करें इसमें, ना कोई हमें टैक्स करें, वरना सुन के भी नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि ये बात तो हुई नहीं थी क्लास में, पता चला वो कोई टैक्स की टुन हुई थी, सोच में पड़े हुए हैं कि पता नहीं किसका टेक्स्ट है, चलो ज़रा सी नज़र बचा के देख लेते हैं कि अंदर क्या मैसेज आया है। ये चीज़ सही नहीं होती, और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमें खुद होता है। दूसरे को क्या फ़ायदा होगा, अगला तो बस यही चेक करेगा, वो मैं देख रही थी सब ठीक हो ना, ठीक पहुँच गए ना। क्योंकि हम इस वक्त अल्लाह के कलाम को अपने दिल पर ले रहे हैं, कोई छोटी बात थोड़ी है। अल्लाह के नबी को तो सर्दी लगने लगती थी, आप तो कांपने लगते थे जब पहली वही आई थी। तो लिहाजा अल्लाह ना करे कि वमा यशहदु बिआयातिना में हम लोग आ जाएं। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही, और उन्होंने कहा क्यों ना उतारी गई इन पर निशानियाँ इनके रब की तरफ से। फिर देखिए वही धान के पान, अल्लाह ताला कहते हैं इतनी निशानियाँ, इतना कुछ देखते थे, फिर एक ही बात 100 बातों की, जी कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, कोई मौजजा? यहाँ आयात से मुराद कुरान की आयतें नहीं है, निशानियाँ, मौजजात, कुछ तो दिखाएं, कोई पहाड़ चलने लगे, कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, कोई ऐसा करे। अल्लाह ताला कहते हैं क्या ये निशानी काफ़ी नहीं है? कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, कह दीजिए निशानियाँ तो अल्लाह के इख्तियार में है। वह इन्नमाना नज़ीर मुबीन, और मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, यानी मैं तो बस जो बात होती है वो पहुँचा देता हूँ। अवलम यकफीहिम, क्या ये काफ़ी नहीं है इनको? क्या कि अन्ना अनज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, हमने आप पर वो किताब उतारी जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है। क्या कुरान के बाद भी किसी निशानी की ज़रूरत है? फबी हदीस से बाद हो यूमिनून, इसके बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? कहा ये कुरान काफ़ी है, इससे बड़ी निशानी क्या होगी? कि हमने आप पर ये उतारी और पढ़ के सुनाई जा रही है। इन नफी ज़ालिकल रहमतम व ज़िक्रा लिक़ौमी यूमिनून, बेशक इसमें रहमत और नसीहत है उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। का बस जिनके दिल बदलने हैं ना, वो इस किताब को देख के बदल जाएंगे। अब इसके बाद अल्लाह से कोई शर्तें न लगाया करो, ये करो वो नहीं, ये कर दोगे तो ये कर देंगे, वो करेंगे तो वो होंगे। ये कुरान काफ़ी है अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए और नबी सल्लम की रिसालत को मनवाने के लिए। अब देखिए कि हर नबी को जो मौजज़ा मिला वक्त पे ख़त्म हो गया। आज यदे बैजा की कोई हैसियत नहीं है, आज मूसा का आसा आ भी जाए दुनिया में तो सांप नहीं बनेगा, कौम सवाले पे ऊँटनी निकली ख़त्म, लेकिन कुरान आज भी मौजूद है और दिल बदलता है। दुनिया में ये वाहिद चीज़ है जो मखलूक नहीं है। हम सब मखलूक हैं, नबी पैगंबर वली फरिश्ते सब मखलूक हैं। ये कुरान अल्लाह के वजूद का हिस्सा है, बल हुआ कलाम अल्लाह। हम कहाँ इस काबिल कि इस किताब को पकड़ें? दिल कांपने लगता है, इस वक्त भी मेरा दिल फड़फड़ा रहा है अंदर से, कि इतना प्यारा कलाम जो मखलूक नहीं है, वाह चीज़ है दुनिया की जो अल्लाह ने अपना हिस्सा में दिया हुआ है। जैसे कोई मर जाता है ना, तो हमने उसकी आवाज़ कहीं टेप की हो ना, तो हम उसकी आवाज़ को सुन के उस दर्द को महसूस करते हैं। उसकी तस्वीरें हमें कुछ नहीं देती, वो तो एक मदी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ इंसान के अंदर से निकलती है, कोई मर जाए ना तो उसकी कैसेट सीडी सुन के बार बार ख्याल आता है कि हाँ या फलां की आवाज़ बंद हो गई है। ऐसे कभी लोग हमारी भी आवाज़ सुनेंगे और कहेंगे कि अब ये दुनिया में नहीं है। कुछ लोग जो टीवी पे आते हैं, जैसे डॉक्टर इसरार साहब के बारे में मैंने सुना है कि टीवी पे आते हैं तो आप उनकी डेथ के बाद लोग उनको देखते हैं तो एकदम फील करते हैं हाँ अब इस वक्त दुनिया में नहीं। जो चीज़ आपके अंदर से निकलती है वो तो आपकी निशानी बन जाती है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, कहाँ अल्लाह सारी दुनिया को चलाने वाला? कभी तुमने इसकी रहमत को महसूस किया? इसकी नसीहत तुम्हारे दिलों में उतरती है? जो इस कुरान को सुनकर भी ढीला ढाला रहेगा, जो इसको सुना के पढ़ पढ़ा के इसकी खिदमत करके भी अपने आप को दूसरों जैसा ही समझेगा, फिर उसके लिए तो ये कुरान कोई नसीहत की चीज़ नहीं है। कुल कफा बिल्लाही बैनी व बैनकुम शहीदा, आप फरमा दीजिए कि मेरे और आपके बीच में तो अल्लाह गवाह है, बस हम किसी दूसरे की गवाही लाते ही नहीं है। यालमु मा फिस्समावाति वल अर्द, वो जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिली व कफरू बिल्ला, और जो लोग ईमान लाते हैं बातिल पर और इनकार करते हैं अल्लाह का, उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग खसारा पाने वाले हैं, ये नुकसान वाले हैं। अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो ये कुरान कोई छोटी चीज़ नहीं है, तुम भी अब थक ना जाओ इसको पढ़ पढ़ के, पढ़ा पढ़ा के, और इसको आगे से आगे ले जाओ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अल्लाह के और तुम्हारे बीच का एक राज है जो अल्लाह तुम पर खोल रहा है। देखिए क्या आप हर एक को अपनी बातें बता देते हैं? क्या आप हर एक से बात कर सकते हैं? कम अज़ कम मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो सबसे मुश्किल लगता है नए लोगों से बातें करना, जो मेरा मिजाज ना समझे, जो मेरी बात ना समझे, मेरा तो दिल नहीं करता उससे फालतू बात करने को। और हम क्या है इंसान, अल्लाह ताला अपनी बात हर एक को देगा। पता नहीं अल्लाह ने आप में क्या खूबी देखी कि आपको इसके लिए चुन लिया। आपके सीने में इसकी एक एक आयत आ रही है, क्या वो सीना जिसमें अल्लाह का कलाम होगा जब कब्र में जाएगी तो वो आयत साथ नहीं जाएगी? क्या अगर कुरान का फहम, इसकी तर्जुमा, इसका मफहूम, इसकी बातें याद होती हैं, क्या ये सारी चीज़ें दिल को खुला नहीं कर देंगी? यकीन करें आज आप खुदा ना खास्ता इस कुरान का गम अपने दिल से निकालें। कई लोग होते हैं रात चलते रुक जाते हैं, जैसे एकदम घड़ी रुक जाती है ना, पता ही नहीं चलता, इस तरह कुरान से गहरा ताल्लुक होता है, छोड़ जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ सारे गम निकल गए इनके दिल से, तर्जुमा याद करने का अब कोई गम नहीं आज इनको, कोई असाइनमेंट का गम नहीं, कोई टेस्ट का गम नहीं, इनको कोई फिक्र कोई खुशी, दिल खाली नहीं हो जाते? और यकीनन होते हैं, ये अलग बात है, इंसान को समझना है। यकीन करें कि कभी अल्लाह ने करे कि मौत से पहले अब ये कुरान हमारे सीनों से निकले और हम इसको छोड़े। अल्लाह कहते हैं ईमान वाले बातिल पर ईमान ले आते हैं, कब? जब उनका ताल्लुक इससे हट जाता है। बिल्कुल कहानी बदल गई, आमनु बिल बातिल व कफरु बिल्ला, अल्लाह अकबर, अपसाइड डाउन होने वाली कैफियत है। कल तक क्या था? वल्लज़ीन आमनु बिल्ला और कफरु बिल बातिल, लेकिन इस तरह से सोच उल्टी होती है। आप देखिए कि कुछ लोगों को आदत होती है अपने दिल में गम पालने की, कुछ औरतें ना अपने दुनिया के कामों से ज़रा फारिग होती हैं, फिर बच्चे का ख्याल आ गया, उसका गम पाल लिया, कभी शौहर का गम, कभी बहन भाइयों का गम। ये कुरान बंदे को गम प्रूफ कर देता, आपको अपनी जान का भी गम नहीं रहता, आपको अपनी मौत का गम नहीं रहता, किसी चीज़ का नहीं रहता। अल्लाह ताला कहते हैं ये इतना बड़ा मौजज़ा है, इसको रहमत बनाओ, इससे नसीहत लो, फिर देखो कि ये तुम्हें क्या देता है और इसमें से तुम्हें मिलता क्या है, वरना उलाइका हुमुल खासिरून, खसारे ही खसारे। लेकिन नहीं समझ आती थी ना उन जालिमों को भी बात, वयस्ताजिलून कबील अज़ाब, और वो आपसे अजाब जल्द हासिल होने का मुतालबा करते हैं कि भाई हम इतना झुटला रहे हैं, इतने गुनाह कर रहे हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आ रहा? का वलौला जलुम मुसम्मा, अगर एक मियाद मुकर्रर ना हुई होती, पहले से सेट प्लान ना होता ना, तो लज्जाहुमुल अज़ाब, इन पर अजाब आ जाता। पहली कौमें भी जब दलाइल के मैदान में शिकस्त खा जाती तो अपना दिल बहलाने के लिए अपने नबी को यही कहती कि देखो हम तुम्हारे दीन को कबूल नहीं कर रहे, तो अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। बिल्कुल यही वतीरा अहले मक्का का था, कहने के हम तो किसी कीमत पर ईमान लाने को तैयार नहीं है और साल हर साल से तुम्हारी दावत को झुटला रहे हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आता? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ताला धोस में नहीं आते, धांधली में नहीं आते, जब वक्त आएगा तुम्हें अजाब की चक्की में पीस दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अचानक तुम ख़त्म हो जाओगे। वलयातियन्नहुम बख्ततन, और वो अपने वक्त पर उन पर अचानक आ जाएगा, वहुम ला यशुरून, और फिर उनको शऊर तक ना होगा। और यकीनन ऐसा होता है जब अल्लाह की पकड़ आती है, बड़ी बेशौरी में आती है। यस्ताजिलून कबील अज़ाब, वो जल्दी तलब करते हैं आपसे अजाब, कह दो इनको क्या, ज़रा सी देर है बस। वइन्ना जहन्नमा लमुहीततुम बिल काफिरीन, जहन्नम यकीनन घेर लेगी इन काफिरों को। क्या हाल होगा उस दिन? यौम यख्शाहुमुल अज़ाब, जिस दिन ढांप लेगा इनको अज़ाब, मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, इनके ऊपर से और इनके कदमों के नीचे से। व यकूलु ज़ूक़ु मा कुंतुम तअमलून, और इनसे कहा जाएगा चखो वो जो अमल तुम करते थे। का चंद दिन की बात है, अगर अजाब नहीं आ रहा तो शुक्र करो नहीं आ रहा, ये मोहलत है तुम्हारे लिए, अभी तुम्हारे लिए मज़ीद सोचने की ज़रूरत है, गौर करो, देखो इस पे तवज्जो रखो। जब दोजख में जाओगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस तरह से बचते हो, तुम अपने आप को अल्लाह की पकड़ से महफूज न समझो। एक वक्त आएगा कि जिस वक्त अल्लाह ताला तुम्हें पूछेगा कि बताओ करके क्या आए हो, लेकिन उस वक्त तुम कुछ कर नहीं सकोगे। इससे क्या पता चलता है कि मोहलत की मुद्दत बहरहाल पूरी होगी। अल्लाह ताला ने लोगों को मौका दिया हुआ है, आप ज़रा इमेजिन तो करें ना, वो दिन कैसे दिन होंगे, घर घर में मुश्किलात, हर तरफ इस्लाम के ऊपर आने की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे घटा टोप अंधेरे छा रहे हैं। ऐसे वक्तों में जो लोग तड़प तड़प के आते थे, फिर आखिर अल्लाह ताला ने सुन लिया कि जाओ बस सब छोड़ दो इनको, बहुत समझा दिया। ऐसे वक्त में कुछ लोग फिर उन्हीं पुरानी मोहब्बतों की बुनियाद पे जाना ना चाहे, तो उनके लिए अगली आयतों में कुछ हुक्म है। या इबादी अल्लज़ीना आमनु, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो। अंदाज देखिए कितना प्यार है अल्लाह को अपने बंदों से, ऐ मेरे मानने वाले बंदो। जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है, मेरे बच्चे तुम मेरी बात जो मानते हो, मेरी बात मानने वाले मेरे बच्चों। अल्लाह के लिए कोई मिसाल दी, लेकिन प्यार से बंदों को ईमान की रग़बत दिला के ईमान की कदर दिलाता है कि देखो तुम ईमान ले आए हो ना, तो अब छोड़ो इनको। इन नार दी वासियतुन, बेशक मेरी ज़मीन बड़ी कुशादा है। फ़ैया या फ़ाबुदून, बस तुम मेरी ही इबादत किया करो। अब ये असल में इशारे थे कि बस ख़त्म, जुल्म ख़त्म, जितना सहना था सह लिया। मदीना की तरफ हिजरत के लिए रास्ते खोले जा रहे थे। अब तैयारी कर लो, ज़मीन बड़ी वसी है, जिस जगह बंदे को अल्लाह का दीन नाफिज करने में मुश्किल पेश आए। कहा, अब छोड़ दो। हम देख रहे हैं कि सूरत के शुरू से लेके यहाँ तक, यानी इस आयत से पीछे, मुसलमानों को कुफार की अदावत, तौहीद, रसालत से इनकार और हक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों का तذکرہ था। कहीं बैतुल अनकबूत के ज़रिए कुफर के हथकंडों का इशारा दिलाया, कहीं मुसलमानों को तलुमाओ ही या इलाइका में उनके शर से बचने के रास्ते बताए, अपना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो। सारी कोशिशें करने के बाद जब ना बात बने तो इन्नार्दी वासियत, यही है पैगाम वेस्ट में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी। पहले सारे काम कर लो, पहले सारे बीच के मरहले तय कर लो, इसके बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुफार के गलबे में आ रहे हो, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी नस्लें बिगड़ रही हैं, तो फिर इन्नार दी वासियत, फिर रिस्क अल्लाह के हाथ में है। ना डॉलर में रिस्क है, ना खरोन में रिस्क है। वैल्यू तो देखिए दो तरह से होती है करेंसी की, एक होती है उसी मुल्क में और एक होती है दूसरे मुल्क में जाए तो वो करेंसी। आप देखिए कि इन्नार दी वासियत, इधर कुछ नहीं और का कि फतुहा जीरूफी हा, छोड़ दो रह लो, बस कायद नार दी वासियत फैया या फाबदून। लेकिन एक हिजरत जो हर एक ने करनी है उसकी तरफ इशारा कर दिया, खुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, ना करो हिजरत, तुम्हारा ताबूत तो फिर भी जाएगा। उस वक्त तो कह दें इसको लेके चलो मरने के लिए, इसको दफन कराओ पाकिस्तान के कब्रिस्तान में, इसको जन्नतुल बकी में ले जाओ। मैं नहीं कह रही कि लेके जाए कि ना ले जाए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक हिजरत बहरहाल होगी। जो लोग सारी सारी ज़िंदगी दारुल कुफर में गुजार देते हैं ना, वो अपनी मैयत वहाँ नहीं दफनाना चाहते। ये पता नहीं वैसे क्या कहानी है, मैंने कई लोगों से पूछा भी इसके बारे में, तो कहते नहीं फिर हम पे तो कोई कब्र पे फातिहा भी नहीं पढ़ने आएगा, फिर तो हमारी नस्लें ही भूल जाएंगी। हमारा तब ये खौफ है, ज़िंदगी भर हम सारी ज़िंदगी अपने रिश्तेदारों से दूर हैं। कई बच्चे 10-10 साल से अपने नानी नाना को, दादी दादा को नहीं मिले हुए। गम क्या है कि मर गए तो वो यहाँ नहीं आ सकेंगे। फिर पलट कर तो हमारी तरफ आना है, फिर देखो कि क्या कमाइयाँ लाए हो। वहाँ ना डॉलर की करेंसी, ना क्रोन की करेंसी, बल्कि वल्लज़ी आमनू वामिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, हम इनको ठहराएंगे जन्नत के बाला खानों में, हम इनकी अच्छी मेहमानी करेंगे। हमें पता है कि ये बहुत आसाइशों के आदी थे, इन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए, अल्लाह ने इनके दिल को इत्मीनान से भर दिया, आज इनको लेके आओ जन्नत के बाला खानों में। गुरफा का लफ्ज़ है ना, ये गुरफतुन की जमा है, बाला खाने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की एक रिवायत है कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं कि उनकी दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि निगाह के सामने हिजाब नहीं होगी, बाहर वाले लोग अंदर वालों को और अंदर वाले बाहर वालों को देखेंगे। एक अरबी ने जब ये इरशाद सुना तो खड़ा होकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, ये किसको मिलेंगे, क्योंकि उनको तड़प ही होती थी कि मिलेंगे किनको। आपने फरमाया, ये उसको मिलेंगे जिनकी गुफ्तगू पाकीज़ा होगी, जो लोगों को खाना खिलाते थे, जो हमेशा रोज़ा रखते थे, और आधी रात को उठकर जब लोग सोते थे तो वो अल्लाह के हजूर खड़े हो जाते थे। तिर्मिज़ी की रिवायत है, अतिमुत्ताम वादामुलस्याम वसल्लल्लाहु बिल्लैल वन्नासुनियाम। कुछ खूबियाँ, कुछ क्रेडिट होता है तो फिर ही वहाँ जाके ये चीज़ें मिलेंगी ना। नेमाजरुल आमिलीन, बेहतरीन अजर अमल करने वालों का क्या अमल, अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो जिन्होंने हर हाल में सब्र किया और अपने रब पर तवक्कुल करते रहे। उनको ये नहीं था कि हमारा रिस्क इधर है कि उधर है, किस तरह से और कहाँ से, वो हर लम्हे अल्लाह के आगे झुकने को, उसकी मानने को तैयार थे। इसीलिए अगली आयत में फिर रिस्क की बात आ गई, वकई मिंदा बतिल्ला तहमिलु रिस्कुहा, और कितने ज़मीन पर चलने वाले हैं जो उठाए नहीं फिरते अपना रिस्क, अल्लाहु यरज़ुकुहा वैयाकुम, अल्लाह तुमको रिस्क देता है और इनको भी, उनको भी देता है और तुमको भी, क्योंकि वह हुवस्समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तिलावत सुनते हैं, फिर ये आखिरी आयतों पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे।
وكأين